सच का खुलासा पार्ट टू। वीर तुरंत आकर अपनी माँ को बचाने की कोशिश करने लगता है और दादाजी भी अब थोड़ा सा आगे बढ़कर अभिमान जी को रोकने लगते हैं, क्योंकि वसुंधरा की आंखें पूरी तरह से बाहर निकलने को तैयार थीं। अब आगे वहीं सभी लड़कियां भी अब तुरंत आगे आकर अभिमान जी को रोकने लगती हैं, क्योंकि वो वसुंधरा को इस तरह से तड़पते हुए नहीं देख पा रही थी, इसलिए सभी उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। तभी वसुंधरा जोरों से अभिमान जी के हाथों को दूर धकेलते हुए खांसने लगी और खुद को संभालते हुए बोली, अभिमान, तुम्हें क्या लगता है, मैं पूरी जिंदगी इसी तरह से तुम्हारे घर में नौकर बनकर गुजार दूंगी? अगर मैं ये चालबाजी नहीं करती, इस तरह से जायदाद अपने नाम नहीं करवाती, तो पूरी जिंदगी तुम सब मुझे अपना नौकर बनाकर रखते और मुझे ये बिल्कुल भी गवारा नहीं था, समझे तुम सब? और अरमान को अपने काबू में करने के लिए मैंने कुछ ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल किया जिसे पीने के बाद अरमान ने खुद अपनी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दी। वसुंधरा की इस बात पर वीर ने भी सिर हिलाया और अपना कॉलर ऊंचा करते हुए अभिमान जी को कुछ अनमने ढंग से देखकर बोला, मैं कब से आपसे कहने की कोशिश कर रहा था कि मुझे 3 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन आपने 3 लाख रुपए तो दूर की बात है, आपने तो मुझे इस घर का एक रामू काका बनाकर रख दिया है। उसके बाद भी आप लोग मुझसे उम्मीद कर रहे थे कि मैं सुधर जाऊं, हाँ? क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे साथ इस घर में किस तरह का व्यवहार किया जा रहा था? वीर के मुंह से इस तरह की शिकायत सुनते ही अभिमान जी उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। उस वक्त वो पूरी तरह से तमतमाए हुए थे। फिर उन्होंने शांत मन से सोचा, अगर सिंघानिया मेंशन वसुंधरा के नाम हो जाएगा तो इसका मतलब साफ है कि उन सभी को अब इस घर से जाना ही होगा। शायद इस घर से जाने का समय आ चुका है। दादाजी पर बेचैनी हावी होती जा रही थी। वो अरमान की ओर सवालिया निगाहों से देखकर पूछते हैं, अरमान, ये औरत क्या बकवास कर रही है? आखिरकार तूने सिंघानिया मेंशन और सिंघानिया एम्पायर इसके नाम क्यों कर दी? बोल, जवाब दे। ये सवाल सुनकर अरमान ने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा वो जाकर अपनी किंग चेयर पर बेफिक्री से बैठ गया था। वहीं नानी माँ तुरंत ही दादाजी को देखकर एकदम से बोली, देखिए भाई साहब, हमें नहीं पता कि अब हम जो करने जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं, लेकिन आज हम इस औरत को मार मार कर अधमरा कर देंगे। आप देखिएगा, आज ना हमने इसे पीपल के पेड़ की चुड़ैल ना बना दिया तो हमारा नाम भी शारदा देवी नहीं। शारदा देवी ये बोलकर नानी माँ, जो कि काफ़ी हद तक देश में आ गई थी, अब देर ना करते हुए उन्होंने वसुंधरा की जोरदार धुलाई करनी शुरू कर दी थी। नानी माँ का ये रिएक्शन देखकर सबकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई थीं। वहीं अरमान के लिए ये सारा ड्रामा देख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। उसने तुरंत ही हवा में अपना हाथ लहराया और नानी माँ को रोकते हुए गुस्से से चिल्लाया, बस कीजिए, ये सब ड्रामा बहुत हो चुका है। अरमान सिंघानिया के घर में किसी को भी ऊंची आवाज़ में बात करने की या फिर किसी तरह का कोई ड्रामा क्रिएट करने की कोई इजाज़त नहीं है। और रही बातें ज़मीन जायदाद की, तो वसुंधरा रायचंद, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ज़मीन जायदाद मेरे नाम पर तो कभी थी ही नहीं, तो मेरे सिग्नेचर करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अरमान के ये शब्द किसी धमाके की तरह थे, जिसे सुनकर सबकी की आंखें शौक से खुली की खुली रह गईं। वसुंधरा और वीर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरमान के ये शब्द ऐसे थे मानो जैसे वसुंधरा के ऊपर बम फट गया हो। भले ही अरमान का रवैया ठंडा था, लेकिन माहौल में अचानक गर्मी सी फैल गई थी। हालांकि ये गर्मी झुंझलाने वाली नहीं थी, बल्कि सुकून देने वाली थी, जिसे सुनकर दादाजी और अभिमान जी के टेंशन भरे दिमाग को थोड़ी बहुत राहत मिली थी। वहीं नानी माँ भी अब हैरानी से अरमान की ओर देखने लगती हैं। तब तक राधिका और वंशिका, जो कि आस्था को पकड़कर बैठे हुए थीं, उन्होंने तुरंत आस्था को जमीन से उठाकर सोफे पर बैठा दिया था। आस्था अभी भी उसी हालत में थी, लेकिन तभी ध्रुव, जिसके गोद में इस वक्त अंश था, जो कि थोड़ी देर पहले अभिमान जी की गोद में था पर वसुंधरा के साथ झड़प करने की वजह से उन्होंने अंश को ध्रुव की गोद में थमा दिया था। तब ध्रुव ने जल्दी से आगे बढ़कर अंश को आस्था की गोद में थमा दिया था और खुद आहान के पास आकर खड़ा हो गया था, क्योंकि इस वक्त आस्था को अंश के स्पर्श की ज्यादा जरूरत थी। बाकी बाद में वो अरमान और आस्था के बारे में बात कर सकते थे, लेकिन सबसे पहले वसुंधरा ने जो नाटक किया था, इसके बारे में वे लोग सब कुछ जानना चाहते थे। अरमान के शब्द सुनकर वसुंधरा का शरीर क्रोध से भर उठा था। उसकी आंखों की चमक फीकी पड़ गई और वो तीखी आवाज में चिल्लाकर अरमान से सवाल पूछने लगी, क्या बकवास कर रहे हो तुम, हाँ? भला ऐसे कैसे हो सकता है? ये सिंघानिया एम्पायर, सिंघानिया मेंशन, सब कुछ तुम्हारे नाम पर है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अब तुमने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दिया है, तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी की मालकिन मैं हूँ, और तुम चाहे कितनी भी चाल चल लो अरमान, लेकिन अब तुम मुझे तोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मुझे अपनी बातों में उलझाकर जरूर बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे ताकि वापस से अपनी प्रॉपर्टी पा सको, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और इस बुढ़िया ने तो आज मुझ पर हाथ उठाकर अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। इस बुढ़िया को तो मैं यहाँ एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसलिए इसे अभी इस मेंशन से जाना होगा। एक पल के लिए मैं तुम सब पर तरस खाकर यहाँ रहने दे सकती हूँ, लेकिन इस बुढ़िया को मैं यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं रहने दूंगी। वसुंधरा की इस तरह की बातें सुनकर अरमान जोर जोर से हंसने लगा। उसने तुरंत ही अपनी जेब में से वही सफेद रंग के ड्रग्स का पैकेट, जो कि वसुंधरा ने वीर के जरिए अपने पुराने असिस्टेंट से मंगवाया था, वो ड्रग्स का पैकेट उसके सामने लहराते हुए बोला, तुम्हें क्या लगा था कि इस मामूली थर्ड क्लास ड्रग्स के इस्तेमाल से तुम अरमान सिंघानिया का दिमाग खराब कर सकती हो? हाँ, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है वसुंधरा रायचंद, क्योंकि मैं तुम जैसी घटिया और चालबाज औरतों को अच्छी तरह से जानता हूँ, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जिस वक्त मैंने पहली बार वो कॉफी पी थी, उसी वक्त मेरा दिमाग किसी अलग ही डायरेक्शन में जा रहा था, जिस कॉफी को मैं बचपन में पीता था। क्या मुझे तुम्हारे हाथों की उस कॉफी का टेस्ट पता नहीं होगा? तुम्हें क्या लगा था मुझे ड्रग्स वाली कॉफी का फर्क पता नहीं चलेगा? वसुंधरा ने जो ड्रग्स मंगवाया था, वो ड्रग्स उसने कहीं और नहीं बल्कि अरमान की कॉफी में मिलवाया था, ताकि जब जब वो अरमान को कॉफी में ड्रग्स मिलाकर देगी, ठीक उसी वक्त अरमान पर उसका असर होगा और अरमान कुछ समय के लिए वसुंधरा के कब्जे में होगा। वसुंधरा जैसा कहेगी अरमान वैसा ही करेगा, लेकिन वक्त रहते अरमान ने एक ही बार में उस कॉफी के फर्क को पहचान लिया था और वसुंधरा की चाल को पूरी तरह से नाकामयाब कर दिया था। आखिरकार अरमान सिंघानिया कोई आम आदमी नहीं था, भला वो इस चालाक लोमड़ी की चाल में कैसे आ सकता था जिसका वो बेटा था। भले ही उस पर वायरस इंजेक्ट किया गया हो, लेकिन उसी वायरस की वजह से वो एक बार फिर से खतरनाक डेविल किंग बन चुका था, जिसकी नजर हर चीज पर रहती थी। उसे इस तरह से बेवकूफ बना पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। अरमान की ये सारी बातें सुनकर वसुंधरा का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि अरमान ऐसा कुछ सोच सकता है। ये बात जानकर वो थोड़ा घबरा गई और वो अपने माथे पर आए पसीना पूछ कर बहादुरी से बोली, तुम चाहे कुछ भी बकवास कर लो, लेकिन अब देर हो चुकी।
वैसे भी मुझे अच्छी तरह से याद है, जिस वक्त तुमने जमीन जायदाद मेरे नाम कर दी थी, उस वक्त ही तुमने वो कॉफी पी थी। तो इसका मतलब साफ है कि उस वक्त तुम मेरे वश में थे और तुमने खुद अपना मेंशन और सारी धन दौलत मेरे नाम पर कर दिया था। वसुंधरा की इरिटेट आवाज सुनकर एक पल के लिए अरमान को झुंझलाहट हुई और अगले ही पल वो अचानक जोर जोर से हंसने लगा। फिर तंज भरी नजरों से वसुंधरा को देखकर बोला, शायद तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि अरमान सिंघानिया ने बहुत पहले ही अपनी जमीन जायदाद सब कुछ अपने बेटे अंश सिंघानिया के नाम कर चुका था। अब जैसे ही अरमान ने ये बताया तो वैसे ही सब लोग पूरी तरह से हैरान रह गए और उनका दिल एकदम से आश्चर्य में डूब गया। तभी अरमान एक फिर अपनी बात क्लियर करते हुए बोला, मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत पहले ही अपना घर, अपना सिंघानिया एम्पायर और यहाँ तक कि ये सिंघानिया मेंशन भी अंश सिंघानिया के नाम कर चुका हूँ। जैसे ही अरमान ने इस सच का खुलासा किया तो ये सुनकर वसुंधरा के शरीर में वैसे सिरहंसी दौड़ गई थी। उसका दिमाग एकदम से खाली हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा बम गिरा हो। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वहीं आकाश और सुमित, बाकी सबके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई थी। कहीं ना कहीं सबको पता था कि वाकई अरमान सिंघानिया का मुकाबला करना इतना आसान नहीं है। सभी के चेहरे पर एक जंग जीतने मुस्कुराहट थी और सभी लड़कियां और नानी माँ भी काफी खुश नजर आ रही थीं। वहीं आस्था को जल्दी ही वो सीन याद आ गया था जब उसके ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले अरमान ने उससे कुछ कागजात पर सिग्नेचर लिए थे और सारी प्रॉपर्टी अंश सिंघानिया के नाम पर कर दी थी और उसका नॉमिनी कोई और नहीं बल्कि आस्था सिंघानिया को बना दिया था। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, वसुंधरा के हाथ पैर डर के मारे फूल गए थे। अभी थोड़ी देर पहले उसने जो पूरे परिवार के सामने कहा, अब उसे अपनी इस बात का पछतावा होने लगा था। वसुंधरा के चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा बिगड़ गए थे। तब अरमान वसुंधरा के पास आया और कड़वाहट भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हारे हाथ में जो ये पेपर है, अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है और ना ही अब इनका कुछ हो सकता है। तुम लोग जानते हो कि तुम लोग अभी तक जिंदा क्यों हो, क्योंकि ये वीर अभिमान सिंघानिया की औलाद है, लेकिन इसकी परवरिश तुम जैसी घटिया औरत ने की तो इसकी संगत भी हमेशा घटिया ही रहेगी, ये कभी बदल नहीं सकता। इसीलिए मैं अभी और इसी वक्त तुम दोनों को घर से बाहर निकाल रहा हूँ और हाँ, अब तुम लोगों की वापस मेरे घर में कभी कोई एंट्री नहीं होगी। वसुंधरा, जो अरमान की कड़वी बातें सुनकर पहले ही शौक में थी, वो अब अरमान की ये सारी बातें बर्दाश्त न कर सकी। अचानक वो घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगी और कुछ सोचते हुए वो तुरंत दादाजी के पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसी हरकत दोबारा नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ अनजाने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आप सबने मुझे इस तरह से नौकर बनाकर रखा था तो ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए मैंने इस तरह की घटिया चाल चली। पापा प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए, एक और मौका दे दीजिए प्लीज। अभिमान जी को अपने दिल में झंझनाहट सी महसूस हुई। उन्होंने तुरंत ही वसुंधरा को धक्का देकर दादाजी से दूर किया और झल्लाते हुए बोले, खबरदार, जो मेरे पिता को अपने गंदे हाथों से छूने की कोशिश की तो। हाँ,
मैं मानता हूँ कि मैं तेरे बेटे को एक मौका देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये सुनकर वीर ने निराश होकर नजरें झुका ली थीं। दादाजी तुरंत ही आगे आए। वसुंधरा और वीर को चेतावनी भरी नजरों से देखते हुए झुंझलाकर बोले, हम अभी तक एक सांप को दूध पिला रहे थे। अरे, हमने तो सोचा था कि शायद तुझ में हमारे बेटे अभिमान का खून है, तो आज नहीं कल तू थोड़ा सुधर जाएगा, लेकिन शायद तेरे बाप के खून पर तेरी माँ का खून ज्यादा भारी पड़ गया और इसीलिए तो तू हमारा होकर भी हमारा नहीं हो पाया। अच्छा हुआ, वक्त रहते तुम लोगों की असलियत हमारे सामने आ गई। अब अभिमान जी तुरंत ही आगे बढ़े और वसुंधरा को बालों से पकड़कर थोड़ी तीखी आवाज में बोले, मैंने तुझे पहले ही समझाया था ना कि बिना किसी चालबाजी के तुझे यहाँ रहना है। अगर तूने ज्यादा चालाकी की तो अंजाम तू सोच भी नहीं सकेगी क्या होगा। अब ये अभिमान सिंघानिया तुझ पर किसी तरह का कोई रहम नहीं दिखाएगा। हमने तुझे पहले ही वार्निंग दी थी, लेकिन तूने कभी हमारी बातों को सीरियसली नहीं लिया। ये कहते हुए अभिमान जी की आंखों में हल्का हल्का दर्द साफ छलका रहा था। अभिमान जी की इस बात पर दादाजी ने भी हामी भरी और उन्होंने वसुंधरा और वीर को तीखी नजरों से देखा और कड़क आवाज में बोले, अब वक्त आ चुका है तेरे किए की सजा देने का। उन्होंने देर न करते हुए गार्ड्स को आंखों से कुछ इशारा किया और उनके इशारे पर गार्ड्स ने तुरंत वसुंधरा और वीर को मेंशन के बाहर उठाकर खींच दिया था। वहीं अभिमान जी की आंखें पूरी तरह से नम हो चुकी थीं, क्योंकि भले ही वीर ने घटिया चाल चली हो, लेकिन आखिर वो उनका खून का था, इसलिए वो इस सिचुएशन में थोड़े इमोशनल हो गए थे। तभी अरमान बिना किसी इमोशंस के अभिमान के सामने आया और शांत आवाज में बोला, आप फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा जिंदा रहेगा, लेकिन वो एक ऐसी हालत में रहेगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। इतना बोलकर अरमान सीधा आस्था के सामने जाकर खड़ा हो गया था। आस्था, जिसकी निगाहें एक पल के लिए भी अरमान के ऊपर से नहीं हटी थीं, वो पूरी तरह से खामोश थी। अरमान के शब्दों ने उसे अंदर तक हिला रख दिया था। आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हस्बैंड।